लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह स्वतः को सुसमाचार के प्रकाश में नवीकृत करने की कृपा और शक्ति प्राप्त कर सके। आमेन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है रविवार ये देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पापा फ्रांसिस का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने 1 अगस्त को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में जमा हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
करी फ्रतेली सोरेले, बोंजोर्नो। ला सेना इनिशियले del Vangelo nella liturgia odierna ci presenta alcune barche in movimento verso Cafarnao.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज की धर्म विधि हेतु लिए गए सुसमाचार के प्रथम दृश्य में हम कुछ नावों को कफरनाहों की ओर जाते देखते हैं। भीड़ यीशु को खोजने जा रही थी। हम सोच सकते हैं कि यह अपने में बहुत अच्छी बात है। यद्यपि सुसमाचार हमारे लिए इस बात को व्यक्त करता है कि ईश्वर को खोजना केवल अपने में अच्छा नहीं है, हमें यह पूछने की आवश्यकता है कि हम क्यों ईश्वर को खोजते हैं। वास्तव में यीशु कहते हैं, तुम मुझे इसलिए नहीं खोजते हो क्योंकि तुमने चमत्कारों को देखा है, बल्कि इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हो गए हो। भीड़ ने सही अर्थ में रोटियों के चमत्कार को देखा था, लेकिन उन्होंने इस चमत्कार के अर्थ को नहीं समझा था। वे चमत्कार के बाह्य भाग पर ही रह जाते हैं। वे भौतिक रोटी तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। वे उसके परे चीजों के अर्थ को नहीं समझते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि यहाँ हम अपने लिए प्रथम सवाल को पूछ सकते हैं,
Perché cerchiamo il Signore? Perché cerco io il Signore?
हम क्यों ईश्वर की खोज करते हैं? मैं ईश्वर को क्यों खोजता हूँ? हमारे विश्वास का उद्देश्य क्या है? हमें इस बात पर विचार मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जीवन की बहुत सारी परीक्षाएं जिसका सामना हम अपने जीवन में करते हैं, उन परीक्षाओं में एक मूर्ति पूजा की परीक्षा हो सकती है। कहीं ईश्वर की खोज करने के पीछे हमारा उद्देश्य यह तो नहीं कि हम उन्हें अपने लिए उपयोग करने की चाह रखते हैं, अपने तकलीफों के समाधान हेतु, उनका शुक्रिया अदा करने हेतु, क्योंकि हम अपने लाभ की चीजों को स्वयं में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो हमारा विश्वास अपने में छिछला रह जाता है। हमारे यह सोचने के बावजूद कि विश्वास चमत्कारी है, हम ईश्वर की खोज अपनी जरूरतों की पूर्ति हेतु करते हैं, और एक बार संतुष्टि प्राप्त करने के उपरांत हम उन्हें भूल जाते हैं। विश्वास के इस छिछले केंद्र बिंदु में ईश्वर नहीं होते, लेकिन हमारी जरूरतें होती हैं। हम अपनी आवश्यकताओं के बारे बहुत सी चीजों के बारे में सोचते हैं। संत पापा ने कहा,
È giusto presentare al cuore di Dio le nostre necessità.
हमारी जरूरतों को ईश्वर के हृदय के सामने प्रस्तुत करना उचित है, लेकिन ईश्वर जो हमारी आशाओं के अतीत कार्य करते हैं, हमसे यही चाहते हैं कि हम सर्वप्रथम उनके संग एक प्रेम के संबंध में बने रहें। सच्चा प्रेम अपने में स्वार्थी नहीं होता, यह स्वतंत्र होता है। यह बदले में कोई चीज प्राप्त करने को प्रेम नहीं करता। यह व्यक्तिगत स्वार्थ है जिसकी पूर्ति हेतु हम बहुत बार अपने जीवन में दूसरों से प्रेम करते हैं। एक दूसरा सवाल जिससे भीड़ यीशु से पूछती है हमारी मदद कर सकता है। ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यह ऐसा प्रतीत होता है कि लोग यीशु से प्रभावित होकर यह पूछते हैं, हम अपने में ईश्वर की खोज को कैसे परिशुद्ध कर सकते हैं। हम चमत्कारिक विश्वास से परे, जो केवल हमारी जरूरतों की पूर्ति के लिए होती है, कैसे उस विश्वास की ओर अग्रसर हो सकते हैं जो ईश्वर को प्रिय है। इस भांति यीशु मार्ग दिखलाते हुए कहते हैं कि ईश्वरीय कार्य उसका स्वागत करना है जिसे पिता ने भेजा है, अर्थात स्वयं यीशु ख्रीस्त का स्वागत करना। यह अलग से किसी धार्मिक रिवाजों को या विशेष नियमों का अनुपालन करना नहीं है, बल्कि यह यीशु का स्वागत करना है। यह उनका स्वागत हमारे जीवन में करना है। यीशु के संग अपने जीवन को एक प्रेम कहानी के रूप में व्यतीत करना है। संत पापा ने कहा कि ये यीशु ख्रीस्त हैं जो हमारे विश्वास को परिशुद्ध करते हैं। हम अपने में ऐसा नहीं कर सकते हैं।
Ma il Signore desidera con noi un rapporto d'amore. Prima delle cose che riceviamo e facciamo, c'è Lui da amare.
यीशु हमसे यही चाहते हैं कि हम उनके संग प्रेम के संबंध में बने रहें। इसके पहले कि हमें उनसे कुछ मिले, हमारे लिए वे कुछ करें, हमें उन्हें प्रेम करने की जरूरत है। उनके संग हमारे प्रेम का संबंध हमारी चाहतों के तर्क और तोल मोल से परे जाता है। यह न केवल ईश्वर के संग अपितु हमारे मानवीय और सामाजिक जीवन के संबंध में भी लागू होता है। जब हम पहले अपने लिए चीजों की खोज करते और उन्हें पाने की चाह रखते, तो हम लोगों और परिस्थितियों का अपनी जरूरतों के लिए दुरुपयोग करते हैं। हमने कितनी बार लोगों को यह कहते हुए सुना है,
ma questa usa la gente e poi si dimentica. Usare le persone al proprio profitto è brutto questo.
वह लोगों का उपयोग करता और उसके बाद उन्हें भूल जाता है। लोगों का उपयोग अपने फायदे के लिए करना अपने में खराब है। और एक समाज जो लोगों को महत्व देने के बदले अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, वह समाज जीवन उत्पन्न नहीं करता है। आज हमारे लिए सुसमाचार का निमंत्रण यह है।
Accogliamo Gesù come il pane della vita e a partire dalla nostra amicizia con lui impariamo ad amarci tra di noi con gratuità e senza calcoli.
हम भौतिक रोटियों की चिंता करने के बदले जो हमें जीवन देता है, यीशु से मित्रता करते हुए उनका स्वागत करने को बुलाए जाते हैं जो हमारे लिए जीवन की रोटी हैं। हम यीशु के द्वारा दूसरों को स्वतंत्र रूप से और बिना तोल मोल किए प्रेम करना सीखते हैं। वे हमें मुफ्त में बिना हिसाब किताब किए, दूसरों का बिना उपयोग किए स्वतंत्रता, उदारता और बहुतायत में अपने को देना सिखलाते हैं। हम कुमारी मरियम से निवेदन करें, जिन्होंने ईश्वर के संग अपने जीवन की प्रेम कहानी को अति सुंदर रूप में जिया, हमारे लिए कृपा की याचना करें, जिससे हम अपने को उनके बेटे से मिलन हेतु खोल सकें। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने सभों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया और सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sit nomen Domini benedictum.
Ex nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर। चाहते हैं तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तू प्यार का सागर सागर दया का तू है गहराई मिले सागर की ऊंचाई मिले आसमां की गहराई मिले सागर की ऊंचाई मिले आसमां की पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 2 अगस्त को कनाडा स्थित वाटरलू विश्वविद्यालय के भौतिकी और खगोल विज्ञान विभाग के ऑप्टिकल भौतिकी के प्रोफेसर दोना थियो स्ट्रिकलैंड को परम धर्मपीठीय विज्ञान अकादमी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। प्रोफेसर दोना थियो स्ट्रिकलैंड का जन्म 27 मई 1959 को गुएल्फ कनाडा में हुआ। उन्होंने हैमिल्टन कनाडा में माइक मास्टर विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में बीए और रोचेस्टर विश्वविद्यालय यूएसए से प्रकाशिकी भौतिकी में पीएचडी की है। प्रोफेसर स्किटलैंड और प्रोफेसर जेराल्ड माउरू को 1985 में लेजर के लिए चिरप पल्स एम्प्लीफिकेशन के अविष्कार के लिए भौतिकी में 2018 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्तमान में प्रोफेसर डोना वाटरलू विश्वविद्यालय कनाडा के भौतिकी और विज्ञान खगोल विभाग में ऑप्टिकल भौतिकी के प्रोफेसर हैं। वे द ऑप्टिकल सोसाइटी के सदस्य हैं, जहां उन्होंने 2011 में उपाध्यक्ष और 2013 में अध्यक्ष का पद संभाला। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सदस्य भी हैं। उधर 1 और 2 अगस्त को असीसी में क्षमा का समारोह मनाया जाता है। विश्वासी जो पोर्चुंकुला के दूतों की माता मरियम गिरजाघर में या दुनिया के किसी भी फ्रांसिस्कन गिरजाघर में जाते हैं, वे पूर्ण क्षमा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी सभी समारोहों में भाग लिया जा सकता है। उम्ब्रिया और सर्देनिया के फ्रायर्स माइनर के प्रोविंशियल फादर फ्रांचेस्को पिलोनी ने कहा, क्षमा हर बच्चे के लिए पिता का आलिंगन है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे सभी जो पश्चाताप करते हैं और पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने के लिए इस गिरजाघर में आते हैं, सभी पापों की पूर्ण क्षमा के साथ उदार मोचन प्राप्त करते हैं। यह असीसी के संत फ्रांसिस का प्रभु से दुस्साहस अनुरोध था। 1216 में एक रात को उनके सामने प्रभु प्रकट हुए थे, जब वे पोर्चुंकुला गिरजाघर में प्रार्थना में लीन थे। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अचानक खुद को प्रकाश की किरणों में घिरा पाया। प्रभु ने उन्हें यह कृपा प्रदान किया और फ्रांसिस असीसी तुरंत मोक्ष प्राप्त करने के लिए संत पापा होनेरियस तृतीय के पास गए और 2 अगस्त 1216 को एक बड़ी भीड़ के सामने उम्ब्रिया के धर्माध्यक्ष की उपस्थिति में उन्होंने महान क्षमा की घोषणा की। उस दिन फ्रांसिस ने ओक पेड़ की छाया में शरण लिए हुए लोगों से कहा, भाइयों, मैं आप सभी को स्वर्ग भेजना चाहता हूं और मैं उस अनुग्रह की घोषणा करता हूं जो मुझे परमाध्यक्ष संत पापा से प्राप्त हुआ है। असीसी के संत की घोषणा के बाद से वह दिन पोर्चुंकुला के खजाने के जन्म का प्रतीक बन गया। उस दिन अपने पापों या मृतकों के पापों की क्षमा के लिए मोचन का अनुरोध किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने की आवश्यकता है, साथ ही पवित्र मिसा में भाग लेकर पवित्र यूखरिस्त ग्रहण करना है। अपने विश्वास को नवीनीकृत करने के लिए धर्मसार की प्रार्थना, हे पिता हमारे की प्रार्थना, और अंत में संत पापा के मतलबों के लिए प्रार्थना करना है। पोर्चुंगुला के गिरजाघर में हर दिन प्राप्त होने वाले दंड मोचन 1 अगस्त के 12 बजे अपराहन से 2 अगस्त के 12 बजे रात तक दुनिया भर के सभी पल्ली गिरजाघरों में और सभी फ्रांसिस्कन गिरजाघरों में प्राप्त की जा सकती है। उधर अल्बिनियाई महिलाओं और बच्चों का एक समूह जो सीरिया और इराक में लड़ रहे इस्लामी चरमपंथी समूहों में शामिल हो गए थे, वे अपने वतन लौट आए हैं। उनका आगमन रविवार को यूरोप के कई अन्य देशों में इस बात पर बहस के बीच हुआ कि इस्लामिक स्टेट जैसे समूहों के लड़ाकों और समर्थकों के साथ क्या किया जाए। लंबे इंतजार के बाद 5 अल्बानियाई महिलाएं और 14 बच्चे सीरिया के कुख्यात अल होल कैंप से अल्बानिया पहुंचे। ये महिलाएं सीरिया और इराक में लड़ रहे इस्लामिक चरमपंथी समूहों में शामिल हो गई थी। लेबनान से उड़ान भरते हुए उनके साथ अल्बानियाई प्रधानमंत्री एडी रामा और आंतरिक मंत्री ब्लेडी कुशी भी थे। एक बयान में रामा ने इसे एक बहुत ही सकारात्मक घटना कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन महिलाओं और बच्चों को पश्चिमी बंदरगाह शहर डुरेस में एक आश्रय में ले जाया जाएगा। वहां पुलिस और सामाजिक विशेषज्ञ चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परीक्षण करेंगे। इसके बाद क्वारंटाइन अवधि होनी है। इसके बाद कुछ को अपने परिवारों में फिर से मिलने की अनुमति दी जा सकती है। श्री रामा ने यह नहीं बताया कि संभावित युद्ध अपराधों और अन्य अत्याचारों के लिए महिलाओं पर मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं। रविवार को महिलाओं और बच्चों का परिवहन सीरिया में युद्धग्रस्त क्षेत्रों से अल्बानियाई लोगों को वापस लाने का 3रा प्रयास था। पिछले साल अक्टूबर में 5 अल्बानियाई लोगों को स्वदेश भेजा गया था, जबकि एक बच्चा 1 साल पहले देश लौटा था। अधिकारियों का मानना है कि कुछ 100 अल्बानियाई लोग इस्लामिक स्टेट सीरिया और इराक में लड़ रहे अन्य समूहों में 2010 के दशक की शुरुआत में शामिल हुए थे। कई लोग मारे गए और उनकी पत्नियां और बच्चे सीरिया के शिविरों में फंसे हुए हैं। उधर लंपेदूसा के बंदरगाह में प्रवासियों का आगमन तेज हो गया है। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IOM के अनुसार इस वर्ष मध्य भूमध्य सागर में प्रवासियों का प्रस्थान, अवरोधन और आगमन बढ़ रहा है। NGO SOS मेडिटेरानियन के अनुसार भीड़भाड़ वाली अस्थायी नावों पर भूमध्य सागर पार करने का प्रयास करने वाले 700 से अधिक लोगों को सप्ताहांत में बचाया गया, विशेष रूप से माल्टा और लीबिया के तट पर। यह अभी तक तय नहीं हो पाया है कि ये लोग किस सुरक्षित बंदरगाह में उतरेंगे। सप्ताहांत में भी लंपेदूसा के तट पर कुल 191 प्रवासियों को लिए 11 नावें पहुंची। उनमें से कई टूनिशियाई हैं, जबकि अन्य बांग्लादेश, मिस्र और सूडान के हैं। द्वीप के हॉटस्पॉट में 250 की अधिकतम क्षमता वाले स्थान में वर्तमान में 1,135 प्रवासी रह रहे हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।